ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ ದೋ ಸ್ಥಳ ದೇಖನೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈನ್. ಏಕ್ ತೋ ಯಹಾ ಜಹಾ ಹಮ್ ಅಭಿ ಬೈಠೆ ಹೈನ್, ಜಿಸ್ ಜಗಹ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಗರುಡ್ ಗೋವಿಂದ, ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸಹಿ ನಾಮ ಕಾ ಏಕ್ ಜಗಹ ಹೈ ಜಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ್ ಲೀಲಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ನೆ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲೋ ಔರ್ ಬಛಡೋಂ ಕೋ ಜಹಾ ರಖಾ ಥಾ. ಸಾಧಾರಣತ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಉಸ್ ಜಗಹ ಮೇ ಉಸ್ ಜಗಹ ಕಿ ಕಥಾ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್, ಪರ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹಾಂ 30 ಬಸೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ಸಬ್ಕೋ 30 ಬಸ್ ಚಢನಾ ಔರ್ ಫಿರ್ ಉತರ್ನಾ ಫಿರ್ ಕಥಾ ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಸೆ ಚಢನಾ ಉತರ್ನಾ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಏಕ್ ಜಗಹ ಮೇ ಹಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಜಗಹ ಕಿ ಕಥಾ ಬತಾ ದೇಂಗೆ. ತೋ ಕೃಪಯಾ ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ಸುನಿಯೆ ಔರ್ ಉಸ್ ಸ್ಥಳ ಪೆ ಜಾನೆ ಮೇ ಕಾನೂನ್ ಸೆ ಸುನ್ಕರ್ ಆಂಖೋ ಸೆ ದೇಖಿಯೆ ಔರ್ ಉಸ್ ಜಗಹ ಕಾ ಜೊ ಮಹತ್ವ ಹೈ ಉಸ್ಕೊ ಸಮಝ ಕರ್ ಉಸ್ ಜಗಹ ಕಿ ಜೊ ಕೃಪಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೊ ಹಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈನ್. ತೋ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಜಗಹ ಉತ್ತನಾ ಸುವಿಧಾ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಬೈಠ ಸಕೆ. ತೋ ಯೇ ಜಗಹ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳ ಹೈ. ಇಸ್ ಜಗಹ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಗರುಡ್ ಗೋವಿಂದ. ಜಬ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಗೋಕುಲ್ ಮಹಾವನ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಅಸುರ ತಕಲೀಫ್ ದೇ ರಹೆ, ಸಮಸ್ಯಾಯೆ ಆ ರಹಿ, ಪೂತನಾ ಆಯಿ, ಶಕಟಾಸುರ ಆಯಾ, ತೃಣಾವರ್ತ ಆಯಾ, ಯಮದ ಅರ್ಜುನ್ ವೃಕ್ಷ ಗಿರ್ ಗಯೆ. ತೋ ಚಿಂತಿತ ಹೋಯೆ ಔರ್ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಪಾನಂದ ನಂದ ಸಬ್ ಯೇ ಲೋಕ ಸಬ್ ಬ್ರಜವಾಸಿ ಏಕತ್ರಿತ ಹೋಕರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯೆ ಕಿ ಅಭಿ ಕೋಯಿ ದೂಸರಿ ಜಗಹ ಜಾಯೆಂಗೆ ಜಹಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೋ. ಔರ್ ತಬ ಉನ್ಹೋನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ ಕಿ ಹಮ್ ವೃಂದಾವನ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಇಸ್ ತರಫ್ ಸೆ ಆಯೆ ವೋ ಛಟಿಕರಾ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ, ಈ ಜಗಹ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ್ ಲೀಲಾ ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಹೈ ಯಹಾಂ. ಶಕಟೀಕರ ಐಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ, ಶಕಟ್ ಯಾನಿ ಗಾಡಿ ಬೈಲ್ಗಾಡಿ ಜೊ ಕಹತೆ ಶಕಟ್, ಶಕಟಾಸುರ ಕಹತೆ ಶಕಟ್. ಔರ್ ಕರ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಯಾ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಆಕಾರ. ತೋ ಜಬ್ ಜಾತೆ ಥೆ ತೋ ಶಾಮ್ ಕೆ ವಕ್ತ ವೋ ಪೂರೆ ಅಪ್ನೆ ಸಾರೆ ಗಾಡಿಯೋ ಕೋ ಬೈಲ್ಗಾಡಿ ಜೊ ಥೆ ಉಸ್ಕೋ ಏಕ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಆಕಾರ ಮೇ ರಖ ಕರ್ ಔರ್ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ವಹಾಂ ಗೋಪಿಯಾ ಸಬ್ ವಹಾಂ ರಹತಿ ಗೋಪಿಯಾ ಸಬ್. ಇಸಿಲೇ ಇಸ್ ಜಗಹ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಛಟಿಕರ ಔರ್ ವಹಾಂ ಸೆ ಯಹಾಂ ಯೇ ಜೋ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಯೇ ಜಗಹ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಗರುಡ್ ಗೋವಿಂದ. ಬೃಂದಾವನ್ ಬ್ರಜಮಂಡಲ್ ಕಿ ಜೊ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ. ತೋ ವೋ ಜೊ 84 ಕೋಸ್ ಜೊ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಯೇ 12ವಾಂ ಸ್ಥಾನ ಹೈ. ವಹಾಂ ಮೇ ದೇಖ ರಹಾ ಥಾ ವೋ ಸುಂದರ್ ಸೆ ವರ್ಣನ್ ಹೈ ಸಬ್ ಜಗಹೋಂ ಕಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಜಗಹ ಕಾ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ಯಹಾಂ ಆಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನೆ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ ಕೂದ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಇದರ್. ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀಧಾಮ ಗರುಡ್ ಜಿ ಕಾ ಭಾವನಾ ಧಾರಣ ಕರ್ಕೆ ಗರುಡ್ ಕಾ ರೂಪ ಹಿ ಧಾರಣ ಕರ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಕರ್ನೆ ಲಗಾ ಔರ್ ಉಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ विष्णु के रूप में उनके कंधे पर आरूढ़ होकर और फिर अच्छा ग्वाल वालों को आनंद दिया। तो इस जगह का नाम गरुड़ गोविंद है। ऐसे भी बताया जाता है कि यहां से गरुड़ जी प्रणाम करते हैं वृंदावन की ओर। जब से शौबरी मुनि का शाप हुआ कि तुम यमुना के पास आ नहीं सकते हो, तुम अब कथा सुनते हैं नवे स्कंद में शौबरी मुनि के किस तरह से पतन हो गई, तो वो शाप दिए थे और उस शाप के कारण गरुड़ जी यहां से प्रणाम करके चले जाते थे। ये स्थान है वो। तो ये जो सुंदर विग्रह आप यहां देख रहे हैं, ये गरुड़ गोविंद है। आप देखेंगे भगवान बैठे हुए हैं और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हैं। आप उनके छाती के पास देखेंगे छोटा सा चेहरा दिख रहा है, वो गरुड़ जी हैं। गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है वो, यहां सुंदर मूर्ति जो है, और 12 हाथों के गोविंद का स्वरूप है जो केवल अक्षय तृतीया के दिन पूरा दर्शन खोलते हैं, कहते हैं पूरा संपूर्ण दर्शन मिलता है। तो गरुड़ जी, रामायण में भी ऐसा प्रसंग आता है जब राम और लक्ष्मण को तीर मारकर नागपाश से बांध दिया गया था और दोनों लेटे हुए थे मूर्छित होकर, और तब नारद जी ने गरुड़ जी को आमंत्रित किया और जब गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को देखकर वो नाग जो बांधे हुए थे राम और लक्ष्मण को भाग गए डर के मारे। तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक क्षण के लिए गरुड़ जी को शंका हुआ, जैसे ब्रह्मा जी को यहां हुआ ना ब्रह्म विमोहन, ऐसे गरुड़ विमोहन, गरुड़ जी को भी शंका हुआ, ये राम और लक्ष्मण सचमुच में भगवान है? निस्सहाय ऐसे लेटे हुए, मैं आते ही डर के मारे मेरे डर से भाग गए सर्प, और ये सर्प बांध के रखे हुए। तो इसी तरह जब गरुड़ जी यहां आए और उन्होंने देखा ये ग्वाल बालों को खेलते हुए, तो उनके हृदय थोड़ा एक शंका हुआ। और तब गरुड़ जी का इस संशय दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का स्वरूप 12 हाथों का और जब ये देखा स्वरूप देखा, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं ये मेरे ही प्रभु हैं। और तब गरुड़ जी ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही गोविंद उनके ऊपर सवार होकर फिर ये सुंदर लीला किए इधर। तो इसीलिए ये जो सुंदर स्वरूप है कहा जाता है ये वज्रनाभ ने 5000 साल पहले स्थापित किया है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद करीब 100 साल के बाद इस सुंदर मूर्ति को स्थापन किया गया था। तो इस स्थल के बाद हम लोग जाने वाले हैं, और ये जो स्थान है यहां से इस तरफ सामने की ओर पूरे, ये ब्रह्म विमोहन लीला से सारे स्थान जुड़े हुए हैं। और इन स्थानों में जब हम लोग चर्चा करते हैं, जिस स्थान में वो लीला हुई है उस जगह में वो लीला को जब हम सुनाते हैं या सुनते हैं, उसका एक खास महत्व है। हमारी जो स्मरण शक्ति है वो गहरी हो जाती है, और यही जीवन का उद्देश्य है। हमारे सारे जो हम साधना करते हैं, साधना का उद्देश्य क्या है? सारे साधना भक्ति जो करते हैं, 64 अंग रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिद्धु में, उस सब का सार है स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुर एतयोरेव किंकरा। स्मर्तव्य सततम विष्णुर, हमेशा भगवान का स्मरण हो, कृष्ण का स्मरण हो, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भगवान को भूले नहीं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान गीता में कहते हैं शरीर छोड़ते वक्त अगर कोई मेरा स्मरण करे तो उसका उद्धार हो जाता है, फिर से वापस यहां नहीं आएगा इस संसार में। तो स्मरण गहरा कैसा होता है? ये स्मरण गहरा करने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं, पवित्र स्थानों में आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं अनुकूल, क्या है अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति का मतलब है शरणागति, शरणागत के लिए छह अंग हैं, उसमें पहला है अनुकूल चीजों को स्वीकार करो। और उस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु गए और लीला की उस स्थल में मैं जाऊंगा प्रणयी भकत संगे, प्रेमी भक्तों के संग में, और वहां मैं श्रवण करूंगा। अभी आप यहां स्थान पर आए हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, आंखों से दर्शन किए और नाक से सुंदर पुष्प जो दिया गया या कुछ सूंघा, कान से उस स्थल के बारे में सुना और अपने शरीर से उस जगह का स्पर्श हुआ, प्रणाम किया, धूल लिया या कुंड है तो स्नान किया, तत्पश्चात अगर आप और उस जगह की महिमा सुनी, उस जगह की लीला आपने श्रवण किया, तत्पश्चात आप अगर बंबई जाएंगे और बंबई में जाने के बाद आपको कोई कहेगा गरुड़ गोविंद मालूम है, तुरंत आपको स्मरण हो जाएगा, बहुत आसानी से स्मरण होगा और बड़े मतलब अच्छे तरीके से स्मरण होगा। क्यों? क्योंकि आंखों से देखा हुआ। अगर जैसा अगर मैं रशिया में जाके बोलूं कि रसगुल्ला तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ना रस मालूम है ना गुल्ला क्या है मालूम। पर अगर यहां कहूंगा रसगुल्ला तो आपके मुंह से पानी आएगा, आंखों के सामने गोल गोल नजर आएंगे और जिह्वा से मतलब आपको अनुकूल होगा और त्वचा लगेगा यार ऐसा इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम क्रिकेट बॉल जैसा। तो जिसने कभी सुना ही नहीं है उसको स्मरण करना मुश्किल है, पर जिसने जगत को देखा है, स्पर्श किया है, इंद्रियों से पूरा उसको आस्वादन किया है, तब स्मरण करना आसान हो जाता है। इसीलिए ऐसे स्थल में जब आते हैं तो जितना हो सके पूरे इंद्रियों के साथ हृदय खोल के और सारे इंद्रियों को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कानों से देखा जाता है धाम को, आंख से नहीं। आंख से देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, कान से देखेंगे तब सुनेंगे। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, भले आप आराम करो कितने भी, पर ऐसे जगह नींद आए तो खड़े हो जाओ अच्छा है, क्योंकि फिर से पता नहीं मौका ही मिलेगा कि नहीं, क्या मालूम कितनी आयु है हमारी। तो ये स्मरण कैसा बढ़ता है? जब बार बार श्रवण करते हैं, और इसीलिए ये आतुरता होनी चाहिए श्रवण करने की। और ये पहला लक्षण है जो परीक्षित महाराज हमको सिखाते हैं, बड़ी आतुरता के साथ वो श्रवण करते थे। और ये स्मरण क्यों करना चाहिए हमें, ये स्मरण को बढ़ाना क्यों चाहिए कि यद अनुद्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि। भगवान का स्मरण जो है, नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुणों का स्मरण, लीलाओं का स्मरण, धाम का स्मरण, ये स्मरण जो है एक बहुत ही तीक्ष्ण तलवार के समान है। यद अनुद्य असिना, भागवत कहता है कि भगवान का स्मरण एक तलवार जैसे है, बहुत ही तीक्ष्ण तलवार। यद अनुद्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म ग्रंथि को काट सकता है। हमारे हृदय में जो ग्रंथि है भौतिक संसार से, जो आसक्ति की ग्रंथि है, एक गांठ को निकालना बड़ा मुश्किल है, पर भगवान का स्मरण ऐसा तलवार है जो इस गांठ को बड़ी आसानी से काट देगा। इसीलिए स्मरण करना बहुत जरूरी है। और स्मरण इस स्थिति में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां विस्मरण होना बड़ा तकलीफ है, और जहां प्रेम नहीं है वहां स्मरण होना बड़ा मुश्किल है। तो यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि छिंदंती कोविदस्तस्य को न कुर्यात कथा रतिम। इसीलिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति। अभी प्रेम नहीं है तो क्या किया जाए? प्रणयी भक्त संगे। इसीलिए अगर प्रेमी भक्तों के संग में आएंगे, और ऐसे प्रेमी, इसीलिए उसके अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, शुश्रूषो शद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया। महान भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो उस भक्तों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हम जिन भक्तों की सेवा करते हैं उन भक्तों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और महान भक्तों का एक प्रमुख गुण क्या है? उनको बहुत आतुरता है भगवान के बारे में सुनने की। तो स्यात् महत् सेवया, और इसीलिए ऐसे जगह में आकर, ऐसे बहुत ही मंगलमय है ये। कल दिवाली था, कल हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। मंगलमय मतलब क्या? ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑस्पिशियस, हर प्रकार से जगह मंगलमय है। दिन बड़ा मंगलमय है, जगह बड़ा मंगलमय है। क्यों? क्योंकि ये धाम है और मंगलमय वातावरण है। इतने सारे वैष्णव मिलते हैं कभी बंबई में? शहरों में ढूंढने से नहीं मिलते। एक व्यक्ति तिलक वाले तिलकधारी में नहीं मिलता। इतने सारे वैष्णव, गिर के गिरा भी किसी वैष्णव के ऊपर ही गिरेगा बस। और इसके अलावा तो मंगलमय दिन, मंगलमय जगह, मंगलमय वातावरण, और उसमें सबसे मंगलमय नाम और कथा कृष्ण का। तो मंगलमय मतलब क्या? वो दिन, वो समय, वो जगह, वो परिस्थिति जहां हम भगवान से जुड़े, भले भौतिक रूप से अमंगल दिखे, अमंगल लगे वो, पर अगर वो कृष्ण की निकट हमें लाता है, स्मरण कराता है, तो हमें समझना चाहिए सबसे मंगलमय परिस्थिति है। और जो परिस्थिति भौतिक रूप से मंगल या अमंगल हो, पर जो हमें भगवान का विस्मरण करा देता है, भगवान से दूर ले जाता है, ऐसा स्थिति, ऐसा दिन, ऐसा समय, ऐसा प्रसंग सबसे अमंगलमय है। लॉटरी लग गया हमको लगता बड़ा मंगलमय है, पर उस लॉटरी से अगर भूल गए भगवान को तो सबसे अमंगलमय वही हुआ जिस दिन लॉटरी लगा हमारा। तो यह मंगलमय है। सबसे बड़ी दुर्घटना क्या है? विष्णु पुराण कहता है सबसे बड़ी दुर्घटना क्या है? स्कूल के लड़के से पूछो, बोले अगर परीक्षा में फेल हो जाए ना, सबसे बड़ा दुर्घटना जीवन का वही है। कॉलेज के लड़के से पूछो, बोला अगर एक नवयुवती के साथ प्रेम हो गया, वो छोड़ के चली गई, उससे बड़ा दुर्घटना जिंदगी में कोई नहीं। और कोई अगर जो जॉब कर रहा है उसे पूछो सबसे बड़ी दुर्घटना क्या है? जिस दिन अगर मुझे पिंक स्लिप दे दिया और बोला तू निकल जा यहां से। तो अनेक को अलग अलग अपना अपना सबसे बड़ी दुर्घटना। किसी का बहुत बड़ा धन नुकसान हो गया तो सबसे बड़ी दुर्घटना। किसी के बहुत प्रिय व्यक्ति गुजर गए परिवार में, सबसे बड़ी दुर्घटना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, सबसे बड़ी दुर्घटना। पर विष्णु पुराण कहता है ये सब दुर्घटना नहीं है। सबसे बड़ी दुर्घटना है भगवान को एक क्षण के लिए भूल जाना। हम हंस रहे हैं, क्यों? क्या फर्क पड़ता है जी? प्रसाद टाइम पे मिले तो काफी है बस। भगवान स्मरण हम नहीं समझते, पर महान भक्तों का लक्षण यही है। भाव भक्ति के स्तर पर एक क्षण के लिए भी अगर भगवान को भूल जाए तो बर्बाद हो गया एक क्षण। आयुष क्षण एकोपी नलभ्य स्वर्ण कोटि भी, क्योंकि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी खरीदा नहीं जा सकता। तो जो भी चीज हमें भगवान का स्मरण कराने में और भगवान के निकट लाने में मदद करता है उसका पूरा लाभ लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। और तब ये कैसे लेंगे? हरि कथा का आश्रय, भगवान के भक्तों के संग का आश्रय, गुरु की जो वाणी है उसका आश्रय, आज्ञा है उसका आश्रय, और हरि नाम का आश्रय। इसका और ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ये तो हमें सिखाता है कि किस तरह से आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे शारीरिक स्तर से उठाता है हमें। यात्रा में जब आते हैं ना, वो सोच समझ के खाना पड़ता है, सोच समझ के पानी पीना पड़ता है, और 15 दिन के बाद लगता है, अरे मेरे को लगता था मैं 4 बार खाया नहीं तो मर जाऊंगा, पर ये 3 दिन में ऐसे ही चला गया। कैसा चला गया पता ही नहीं। मतलब पता लगता है कि शरीर से कितना हमारी आसक्ति है। मेरे को लगता था मैं बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं चल रहा है, गाड़ी चल रहा है अभी भी ठीक है। 15 दिन के बाद भी अभी भी ठीक है। इतना धूल खाने के बाद तो आस्था हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ठीक है। थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, पर शरीर से ऊपर जाने में मदद होता है। फिर बंबई जाने के बाद भी शायद बढ़ते हैं थोड़ा। तो इस तरह से अभी जो हम लोग जगह जाएंगे, सामने जाने वाले हैं, वो ब्रह्म मोहन का सुंदर लीला है। ये कथा भागवत में आती है, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय, 4 अध्याय 13। तो प्रसंग ऐसा है कि एक बार सारे भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, 5 साल के थे इस समय, कुमार अवस्था में, कौमार लीला, 6 से 10 जो है पौगंड लीला, तो कुमार अवस्था में थे, 5 साल के थे। एक दिन भगवान ने सोचा, चलो आज पिकनिक जाते हैं, वन भोजन, और सुबह सुबह उठे, उठते ही उन्होंने क्या कहते हैं उसको, बैल के सिंह का जो ब्यूगल, क्या कहते हैं ब्यूगल को, बिगुल, हाँ बिगुल समझते हैं ना, सिंह का बना हुआ, हर एक के पास होता था वो। तो भगवान ने अपना बिगुल बजा दिया, अनाउंसमेंट कर, पहले से बोल के रखे थे कल सुबह ना सब लोग मिलने वाले, कई माताएं यहां बैठी हुई हैं जिनके बच्चे हैं। एक बार एक माता जी बता रही थी, प्रभु जी बच्चे का, हमारे बच्चे का जो स्कूल है 8 बजे हो या 10 बजे हो, उनको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, उठते ही नहीं है, और उठने के बाद उनको कपड़ा पहनाने में पहले की इच्छा नहीं, खाना खिलाना पड़ता है, ठूसना पड़ता है, फिर भी नहीं खाते, ये आधा ग्लास दूध है उसको पीने में आधा घंटा लग जाता है, दांत घिसने ले जाए तो मुंह पे ब्रश ऐसे रहता, घिसते भी नहीं है, उनको जबरदस्ती क्या पैंट पहन के उनको घुसाना पड़ता है उसके अंदर, और शर्ट लेके उनको अंदर उसके हाथ घुसाना पड़ता है, और फिर धक्का मार के उनको बस में बैठाना पड़ता है। पर जिस दिन उनको अगर पिकनिक जाना है तो वो हमको उठाते हैं, उठाने का तो छोड़ो, सोते ही नहीं रात भर, 12 बजे उठ के बोलते हैं, मम्मी हो गया ना 4 बज गया, अरे अभी रात भर सो जा अभी। तो जो ग्वाल बाल हमेशा भगवान श्री कृष्ण को हमेशा उनके साथ घूमते फिरते खेलते कूदते थे, उनको इच्छा ही नहीं होती थी आने के लिए, और आए भी रात को 12 बजे उठ जाते, चलो 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 कल यहां चलो जल्दी चलो सब। बाद में यशोदा माई को बोलना पड़ता, जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, स्नान वान करो। तो इस तरह से, और जिस दिन अगर भगवान ने निर्णय लिया चलो अभी आज पिकनिक जाएंगे, तो जैसे उन्होंने ये ब्यूगल बजाए, सारे ग्वाल बाल हजारों हजारों 10-10 हजारों की संख्या में सब के सब आ गए बड़े उत्साह के साथ, और कहा जाता है हां केवल एक व्यक्ति नहीं आया उस दिन, बलराम जी। क्यों? क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्मदिवस था, और इसीलिए रोहिणी मैया ने कहा कि नहीं नहीं आज ठहरो, तुम नहीं जा सकते, आज तुम्हें बहुत सारे यज्ञ करना है, दान देना है। ये वैदिक संस्कृति है, जिसका जन्मदिन होता है दूसरों को दान देता है। पाश्चात्य संस्कृति ऐसा नहीं है, बर्थडे है तो पूरी दुनिया आके मेरे को गिफ्ट देना चाहिए और मैं एक छोटा सा एक टॉफी खिला के भेज दूंगा बस। भगवान ने भी, भगवान जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद महाराज ने नंदोत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, अच्छे अच्छे सब सूत मागद वंदिनः, सब लोग गुणगान करने लगे, वैदिक यज्ञ होने लगा, दान देने लगे। वैदिक संस्कृति में जन्म दिवस मनाना मतलब दान देना, लेना नहीं बल्कि देना। क्यों? विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च। सारे वैदिक जो क्या बोलते हैं क्रिया है, उनका सार दो चीज है, विष्णु आराधनार्थाय मतलब भगवान को प्रसन्न करना, और दूसरा ब्लेसिंग्स क्या बोलते हैं आशीर्वाद लेना, भगवान के आशीर्वाद लेना, भक्तों का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। अगर आशीर्वाद है सबका हमारे पास, भक्तों का, भगवान का, इससे बढ़कर ऐश्वर्य नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ये तरीका है वैदिक संस्कृति में, ज्यादा से ज्यादा उस मंगलमय दिवस में आशीर्वाद लेना, भगवान की कृपा, कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करना। तो इसीलिए बलराम जी ठहर गए, सारे ग्वाल बाल एकत्रित हुए और अपने बछड़ों को सामने रखकर निकल पड़े। एक एक के पास भी असंख्य गाय, अरे बछड़े, क्योंकि छोटे बच्चे जो थे उनको बछड़ा दिया जाता, बछड़ा चराने, और जब बड़े हो जाते तब उनको गाय, तो बछड़े थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं असंख्य का मतलब क्या, एक के सामने अगर 17 शून्य लगा, कोई गणित वाला है इधर अपने कंप्यूटर में डाल के बताओ इसको क्या बोलते हैं इसको, एक के सामने 17 शून्य लगाओ, एक एक बच्चे के पास इतने, एक एक ग्वाल के पास इतने गाय थे, और ये सब गायों को बछड़ों को लेकर हजारों हजारों ये निकल पड़े सब ग्वाल बाल। और वो तो वो, अब कोई कहेगा कि महाराज ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी कोई होता है, अरे 32 मील का तो ये वृंदावन है, उसमें इतने गाय खड़ा कर देंगे तो पब्लिक में लोगों खड़े होने की कहां जगह। ये लीला में यही सबसे बड़ी समस्या है, इसको सुनना और समझना साइंटिफिक लोग, हम लोग जैसे है ना, बहुत मुश्किल होता है सब समझने में, ऐसे कैसे इतने सारे गाय और उसको प्रेम से चरा के वापस लाते थे, और ये अच्छी, और अपने अपने गाय अपने अपने वापस गोठे में जाते थे। यहां 4,800 करीब है, कौन से बस में घुसे समझ में नहीं आता है, कौन से जगह जाना है, 8-8 महीना सोचना पड़ता है ये यात्रा से पहले, सनत कुमार जैसे लोगों को किसको किसको कहां कहां ब्रांड में डाले, लाल बैंड लगाए या हरा बैंड लगाए या नीला, सब रंग उनको नजर आते हैं सितारे। इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए पसीना छूटने वाला है, और इतने असंख्य गैया, अरे बछड़े और छोटे छोटे लड़के ले जाते थे और वापस आते थे, टाइम पे आते थे कैसे होता था ये, नामुमकिन है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए ये क्या है, भगवान की अचिंत्य शक्ति। भक्ति की शुरुआत होती है आदव श्रद्धा। श्रद्धा किस चीज में, श्रद्धा इस चीज में कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, क्या नहीं कर सकते भगवान। अरे भगवत धाम से उतर के आके ये छोटी चीज नहीं कर सकते, तो फिर ये दिखाने के लिए आते हैं, मूर्खों अपनी बुद्धि के अंदर ठूसने का प्रयास मत करो मुझे, तुम ये समझ लो कि तुम नगण्य हो, तुच्छ हो और वो महान है। क्या नहीं कर सकते उनके लिए, क्या नामुमकिन है। इसलिए तो प्रभुपाद जी राजविद्या में लिखते हैं, नारद मुनि वो क्या बोलते हैं, चमार और वो ब्राह्मण का कहानी, जहां वो चमार को पता लगा नारायण से मिलके जा रहे हैं, तो बोले पूछ के आना नारायण से क्या। नहीं तो नारायण के पास गए नारद मुनि, बोले भगवत धाम कौन पहले आएगा, बोले वो चमार पहले आएगा, ये ब्राह्मण करीब करोड़ों साल लगेंगे इसको। क्यों, बोले जब जाएंगे वापस तो बोलना कि क्या कर रहा था नारायण, क्या कर रहे थे, तो बोलना सुई के आंख से हाथी घुसा रहे थे। नारद मुनि बोले हाँ बोलो 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 बोलो। तो नारद मुनि गए तो ब्राह्मण को बोला, तो ब्राह्मण के कहा कि ठीक है तुम, हम सुने हैं वो कथा। ब्राह्मण बोला आप नारद मुनि हो ही नहीं लगता, मुझे डाउट लग रहा है, वैकुंठ जाना तो दूर की बात। ऐसा कोई प्रैक्टिकल है क्या, हाथी को सुई के आंख से घुसाना। नारद मुनि समझ गए ये इसको क्यों करोड़ों जन्म लगेंगे। फिर वो उसके पास गए, वो चमार के पास, और वो बोला क्या कर रहे थे प्रभु हमारे नारायण, और सुनाइए उनके बारे में और कुछ कहिए। बोले वो सुई के आंख से हाथी घुसा, वाह वाह क्या, हरिबोल 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 हरिबोल, क्या कर रहे हरिबोल, तुम्हें विश्वास है कोई हाथी घुसा, क्यों नहीं घुसा सकते, मैं इस पीपल वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे बैठा हूं, एक एक फल के अंदर हजार हजार बीज होते हैं, और एक एक बीज में मेरे प्रभु ने एक एक वट वृक्ष घुसा के रखा है। कौन सा कंप्यूटर में कौन सा ऐसा चिप है जिसके अंदर एक कंप्यूटर है, जिसके अंदर और एक चिप है, जिसके अंदर और एक कंप्यूटर। ये सरल सी बात हमारे दिमाग में नहीं घुसता। और ये यही सिखाने के लिए जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, तत्वतः जानना है तो तत्वदर्शी न, ऐसे तत्वदर्शी जो ऐसी चीजों को साक्षात्कार किए हैं उनसे सुनना है बस श्रद्धा पूर्वक। क्यों नहीं, तो इस तरह से भगवान निकले अपने ग्वाल वालों के साथ, बछड़ों के साथ, असंख्य बछड़ों के साथ निकल पड़े। और जैसे जैसे सामने गए तो उन्होंने देखा, हाँ वन में प्रवेश किए, और प्रवेश करते ही हर एक गोपी अपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरह से सजाई थी, उनको हार पहनाकर सोने का ऐसा इत्यादि बहुत सारे मूल्यवान चीजें। पर जैसे बच्चे एक बार जंगल में घुसे, उन्होंने कहा कि ये डेकोरेशन में कुछ मजा नहीं है, हम लोग खुद अपना डेकोरेशन करेंगे। और वो क्या करते थे, वन के पत्ते, छोटे छोटे फल, फूल, मोर पीस, और वहां के अलग अलग प्रकार के जो मिनरल धूल है, कोई पत्थर घिस के लाल। अफकोर्स वो जब आते थे उनको लगता था हमने बहुत अच्छा कुछ सजाया है, उनके माँ पिता को ऐसा नहीं लगता है। कभी बच्चे आते हैं ना, सब सज धज के आते हैं, पेंटिंग करके सब जगह आते हैं। मैं बोला तुझे पेंटिंग करने बोला था, अपने सर पे कर लिया तो वो करके आए वो लोग। तो पहले पहले अपने आप को लोग सजाते थे अच्छी तरह से, बच्चे लोग सब लोग, और उसके बाद फिर खेलना उनका शुरू होता था। और उनका खेल क्या होता था, इस तरह से अपने आप को सजाने में वो आनंद लेते थे। सचमुच में गिरिराज महाराज एक बार प्रवचन ले रहे थे, उन्होंने कहा कि सच्चा ऐश्वर्य क्या है, व्हाट इज रियल ऑपुलेंस। बोले दो चीज जिसके पास है समझ लेना बड़ा ऐश्वर्यशाली है इस दुनिया में। क्या, एक नेचुरल प्रोडक्ट, नैसर्गिक चीजें, और दूसरा प्रेममयी संबंध। ये दो चीज जिसके पास है समझ लेना बड़ा ऐश्वर्यशाली आदमी है। आजकल कोई चीज नैसर्गिक नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक, प्योर, प्योर घी, प्योर हवा, प्योर पानी नहीं मिलता है। कोई भी शुद्ध ऑर्गेनिक फूड, गाजर या भिंडी जो भी है, इतने सारे केमिकल रहते हैं, ऑर्गेनिक प्योर मिलना मतलब बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसे वाले लोग ही इकट्ठा कर सकते हैं। और प्रेममयी संबंध, अगर एक व्यक्ति भी आपके जीवन में है जो आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार है और आप जिसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ लेना बहुत सौभाग्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो। सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, कोई भी आप कहोगे, उससे जाके पूछो। एक व्यक्ति ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे प्राण देने के लिए तैयार है? वो कहेगा नहीं महाराज, सब प्राण लेने के लिए तैयार है, किसी के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। कोई भी अगर ज्यादा निकट आता है तो कहता क्यों आ रहा है भाई, क्या चाहिए इसको। हमेशा एक पैसे वाले को लगता है पता नहीं क्यों इतने सारे रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैसेज भेज रहे हैं, शंका रहता है। सबसे ऐश्वर्यशाली कौन है? सर्वैश्वर्य पूर्ण कृष्ण। अरे उनके घर तो जाके देखो, कहां है? वृंदावन उनका घर है। और क्या सजाते? मोर का पंख और एक बांसुरी, बंबू का बना हुआ बस, और वनमाला, और अपने आपको सजाते हैं वृंदावन के इस धूल से, गोपी डॉट्स। इस तरह से यह ऐश्वर्य है। और हमेशा वृंदावन में ऐसे लोग घिरे रहते हैं भगवान के, जो एक क्षण के लिए, यशोदा माई भगवान के एक बूंद पसीने को बचाने के लिए लाखों बार प्राण देने के लिए तैयार है। गोपियां भगवान के सर दर्द को एक क्षण कम करने के लिए हमेशा के लिए नरक जाने के लिए तैयार है, केवल भगवान को प्रसन्न करना, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसीलिए कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ब्रज के ब्रजवासियों के लिए। दिस इज ऑपुलेंस, ये ऐश्वर्य है। तो सारे बच्चे अपने आप को सजाते थे, ये असली डेकोरेशन, और उसके बाद फिर जाते थे। और फिर एक बार बच्चे लोग साथ में आ गए तो क्या करेंगे? खेलना, बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता, खास करके 5 साल के बच्चे, उनको प्रवचन में बैठने को बोलो, देखो अभी देखो कहीं बाहर जाके खेल रहे होंगे, उधर खुश है वो। हम लोगों को जबरदस्ती बैठाना पड़ता है, साधना करो। खेलते रहते वो लोग। तो उनका खेल क्या होता था, जैसे ही निकला तो एक ग्वाल बाल दूसरे का टिफिन बॉक्स, जो है क्या बोलते हैं, लंच बॉक्स ले लेना, और ऐसा लटकाता था, चाहिए चाहिए, वो पास आता था तो उसको फेंक देता दूसरे को, दूसरा कैच पकड़ता था, फिर वो उसके पास भाग के आता दूसरे को फेंकता, और फेंकते फेंकते कितने सारे लोग ऐसे चले जाता था। अंत में वो बच्चा रोने लगता था, जब रोता था तो सब उसको वापस दे देते। और ये रोना नॉट आउट ऑफ मिजरी, तंग आके नहीं, ये आनंद से रोता था ये, क्योंकि बच्चे आनंद लेते हैं, उसी में आनंद होता है। दे देना, नहीं दूंगा, दे देना, उसमें आनंद आता है उनको। तो इस तरह से खेलते खेलते घूमते फिरते रहते थे। और फिर श्री कृष्ण ऐसे भागते 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 कहीं दूर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि वृंदावन नव नवायमानम, लोग तंग आ जाते हैं एक ही जगह देख देख के, बैठ जगह बैठ बैठ के बैठ बैठ के, मुंबई में वो ही घर है, वही फ्लैट है हमारा 20 साल से, हमको लगता है वृंदावन छोटा सा जगह है, वो तो सब जगह देख लिया ना अभी, नहीं, नव नवायमानम, भगवान की लीला शक्ति के द्वारा हर रोज वृंदा देवी अलग अलग दृश्य, अलग अलग दृश्य होता था। तो भगवान देख रहे थे, तो एक लड़का कहता था मैं सबसे पहले जाके भगवान को स्पर्श करूंगा, और भागता था। तो दूसरा बोलता था नहीं मैं करूंगा, नहीं नहीं मैं करूंगा, और हजारों हजारों ग्वाल बाल सब भागते थे, देखेंगे कौन पहले स्पर्श करेगा। और भगवान की अचिंत्य शक्ति से हर एक बच्चा सबसे पहले स्पर्श करता था कृष्ण को, और हर एक को लगता था कि मैंने ही स्पर्श किया सबसे पहले। और भगवान भी अपना अचिंत्य तरीके से सबको इतना स्वरूप बना देते, सबको लगता था, लाखों बच्चे, सबको लगता था कि मैंने सबसे पहले स्पर्श किया। उसके बाद फिर जंगल में जाते थे तो इस तरह से बहुत सारे पक्षी बोलते थे, तो उनका नकल करना, अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो वो भी ऐसे ऐसे, उसकी परछाई जो है, परछाई के साथ साथ ऐसे ऐसे वो भी भागते थे, ऐसे ऊपर उड़ रहे आसमान में तो उसकी परछाई के साथ साथ वो भी भागना। तो इस तरह से सब प्रकार के, मुझे याद है कुछ साल पहले राधाना स्वामी महाराज और दीनबंधु प्रभु बैठे हुए थे और इस यही प्रसंग बता रहे थे, तो जैसे जैसे महाराज एक एक चीज कहते थे तो दीनबंधु प्रभु उसका नकल करके दिखाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सब अलग अलग पक्षियों की जो आवाज है वो आवाज वो बच्चे भी निकालते थे उस पक्षियों के बगल में बैठकर उनके जैसा। तो फिर दीनबंधु प्रभु ने शुरू किया अलग से कुछ आवाज, फिर बोले कभी भ्रमर जैसे जाते थे, फिर दीनबंधु प्रभु ने किया, फिर बोले कभी वो कोयल जैसे, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सहन कर रहे हो फिर बंदर जैसे, फिर ये जैसे, वो जैसे, और बाद में ऐसे खेलते खेलते कोई क्या बोलते हैं मेंढक खड़ा रहता था तो वो उसके बगल में जाके बैठ जाता था एक ग्वालवा, तो मेंढक डर के मारे उछलता था, ये भी उसके साथ उछल एग्जैक्टली वैसे ही मेंढक जैसे, फिर वो डर के मारे फिर उछल और जरा जो जाती उछलता था और ये, और ऐसे उछल के सीधा तालाब में कूदता था, तो ये भी कूद मारता था उसके अंदर, और फिर वहां अपना चेहरा देखते थे वो पानी में और अलग अलग चेहरा दिखाते थे उसे, और बाद में कभी कभी एक खाली कुआं, बहुत ही गहरा कुआं, तो सब बच्चे जाते थे तो उसमें तो जब सुनते थे ऐसा, मतलब क्या बोलते उसको प्रतिबिंब, हाँ इको प्रतिध्वनि आती थी तो कुछ तो ऐसे गाली देते थे वापस आता। तो जब दीनबंधु ने सुना, पीछे वहां कुआं था तो पीछे मुड़ के बोले ए साले मुझे लीला याद नहीं है पर ये याद है तो इस तरह से, और कभी बतख जैसे बैठते थे, कभी मयूर जैसे नृत्य करते थे और उनके जैसे ही बोलते थे, इस तरह से बहुत ही सुंदर। कभी कभी अमलकी या बेल का फल लेके बॉल कैच फेंकना। तुरंत इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजहरुः कृत पुण्य पुंजा। बाहर से ऐसा लगता है कि भगवान ही है, मेंढक जैसे छलांग मार रहे हैं, बतख जैसे बैठे हुए हैं, मयूर जैसे बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें देखने, हम लोग को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान षडेश्वर पूर्ण ग्वाल बालों के साथ ऐसे खेल रहे हैं। तो बोले सुनो सुनो सुनो, ये मत समझना ये ग्वाल बाल ऐसे खेल रहे हैं, क्या सौभाग्य है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, करोड़ों जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम ब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में जो साक्षात्कार करते हैं, भक्त लोग जिन्हें अपने परम प्रभु के रूप में मानते हैं, और मामूली लोग जिन्हें मामूली समझ बैठते हैं भगवान को, उस परब्रह्म श्री कृष्ण के साथ ये ग्वाल बाल जो खेल रहे हैं ये मामूली ग्वाल बाल नहीं है, और ये मामूली खेल कूद नहीं है, ये बहुत ही तीव्र और बहुत ही उच्च कोटि का साख्य रस का आदान प्रदान है। साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य है, और ये पुण्य भौतिक कर्मकांड का पुण्य नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की जो क्रिया है, ऐसे क्रियाएं करोड़ों जन्मों तक किए हैं, उस पुण्य के फल से आज ये परब्रह्म के साथ इसने प्रेममयी तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसको मामूली मत समझना। और इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, सारे माताएं भी अनुभव किए होंगे कि जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं उनका खेल बंद करना बड़ा मुश्किल है। खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, खेलने लगता है, खेलते लगता है। और अगर भगवान और ये ग्वाल बाल जो सब चीज उनके सब उनका अनंत है, नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, लीला अनंत है, और उनका जो प्रेम का आदान प्रदान है वो अनंत है, तो ये लीला का अंत कैसे होगा जब भगवान के साथ अगर खेल रहे बच्चे। तो इसीलिए इन लीलाओं को थोड़े समय के लिए विराम देने के लिए लीला शक्ति क्या करती थी, हर रोज लंच के समय एक असुर को भेजती थी, प्रेरित करती थी कंस के द्वारा, बोले परमात्मा में वो असुर को लगता था अभी जाना, मैं टाइम हो गया 12 बज गया, मेरा भी 12 बजने वाला है तो बोला अभी जाना है मुझे। तो लीला शक्ति ऐसे प्रेरित करती थी कि एक असुर लंच के टाइम में आता था और उसको मारने के बाद बोले चलो अभी भूख लग रहा है, चलो बैठेंगे प्रसाद लेंगे। तो आज के दिन जब ऐसे खेल रहे थे ये बच्चे तो वहां एक असुर आया और वो था अघासुर। इसी जगह पे, इसे थोड़ा पीछे जगह है, और वहां आया वो। और आने के बाद ये कौन था, ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई जिनका वध कृष्ण ने कर चुका था, कर चुके थे अभी तक। और वो आया और वो जब ये ग्वाल वालों को कृष्ण के साथ खेलते देखा तो सहन नहीं कर पाया। ग्वाल बालों को कृष्ण के साथ आनंद लेते देखकर जलने लगा ये और कहने लगा इनको भी मारना ही है, एक नहीं सबके सब बच्चों को मैं मार डालूंगा कृष्ण के साथ, और अगर इनको मैं मार डाला तो ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि सबके लिए कृष्ण और ये अपने हर एक व्यक्ति के लिए अपना पुत्र सबसे प्रिय है, बच्चे सबसे प्रिय हैं, वो चले जाएंगे तो फिर अपने आप मर जाएंगे ये लोग। तो उसने एक बहुत बड़ा सांप अजगर बनकर 8 मील लंबा और मुंह खोलकर खड़ा हो गया रास्ते के बीच में। आपने 30 बस हैं, आराम से अंदर जा सकते हैं उसके अंदर, ये रास्ते है ना मथुरा यहां से सब छोटे पड़ जाएंगे। उसकी जिह्वा ऐसे थी मतलब 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, केवल काला नहीं लाल रंग का एक्सप्रेस हाईवे। तो ये मुंह खोल के खड़ा था, सोया हुआ था वहां, लेटा हुआ था। तो उसकी जो बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कैसे उसका ऊपर का हिस्सा जो मुंह खोला था वो बादलों से स्पर्श कर रहा था और नीचे ऐसे, और उसके दांत जो थे पहाड़ी छोटे छोटे पहाड़ी जैसे दिख रहे थे और गुफा जैसे लग रहा था उसका मुंह, और उसका जिह्वा जो था एक्सप्रेस हाईवे एकदम फर्स्ट क्लास रोड जैसा। तो बच्चे खेलते 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 आए और देखा उन्होंने, देखने का है भक्ति थे देखो उधर बहुत अच्छा लगता है, मथुरा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने हमारे लिए एक सुंदर पार्क बनाया खेलने के लिए, इतना सुंदर खेलने का स्थान बनाया हमारे लिए। सबसे पहले उनको लगा एक स्टैच्यू है ऐसा बनाया ना ऐसे खेलने के लिए, वहां देखते हैं हम बच्चों को खेलने के लिए, बोले इस तरह से शायद बनाया हमारे लिए। तो फिर वो पास आए, बोले देखो कितना सुंदर लगता है, अरे तू बड़ा अजगर लगता है, इसमें से घुस के वहां से निकलेंगे पीछे से। आजकल इस्कॉन के थीम पार्क है, वहां एक ऐसा अघासुर बना है, उसके अंदर से जाके पीछे से निकल सकते हैं हम लोग, केवल यही एक अघासुर है जो पीछे से निकल सकते हैं तो बच्चों ने बच्चे पास गए और जाने के बाद उन्हें पता चला, देखा है कि ये तो सचमुच में कोई स्टैचू नहीं है, ये रबर या प्लास्टिक का नहीं है, तो सचमुच का लग रहा है ये, बोले देखो ये लाल जो है ये उसका मुंह है, ये उसका जिह्वा है, और ये जो हवा आ रहा है गर्म हवा